हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 4, 5, 6, 7। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले हृदय से समस्त भौतिक इच्छाओं और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णाद्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणां प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम् रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु वर्केनया कल्पिता। श्रीमत् भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो महा। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांभर दरुण बिंब फल धरोष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा। कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानि। प्रजेव संतम् नवनीत चोरं गोपांगना सजुकूल चोरं अनेक जन्मा च
चितपापशूरम् श्रीराधिकाये हृदयस्य चोरम् चोरागगण्यम् पुरुषम् नमामि श्रीकृष्णश्यामम् मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुधीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 4, 5, 6, 7। कल जहां तक हमने पढ़ा था उसी से आगे अभी हम कथा सुख गोस्वामी हमें उसी कथा में आगे लिखे जाएंगे। जैसे कल हमने पढ़ा कि महाराजा परीक्षित अपने घर पे जब पहुंचे तो उनको बहुत ज्यादा वेदना हो रही थी, बहुत दुख हो रहा था, बहुत पश्चाताप हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने ब्राह्मण के प्रति जघन्य तथा विशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप अत्यंत उदास थे वो, और वो चाहते थे कि ये इतना बड़ा मैं अपराध करके आया हूँ, मैंने भगवान के आदेशों की अवहेलना की है, मुझे निश्चित रूप से आकांक्षा है कि निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना इच्छक की कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आए, क्योंकि इस तरह से मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। और महाराजा परीक्षित ने कहा, मैं ब्राह्मण सभ्यता ईश्वर चेतना तथा गौ रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप विशिष्ट तथा पापी हूँ, अशिष्ट हूँ, पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन, मेरा ये जो ब्राह्मण कुल है वो सब मुझे श्राप दे दें, या किसी तरह से उनकी क्रोध अग्नि से मेरा सब कुछ जल कर भस्म हो जाए, और ताकि मैं भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मार्गदर्शित ना हूं। इतना ही वो सोच रहे थे, अभी वो सोच ही रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? सुत गोस्वामी कहते हैं, सचिंतयन् नित्थमथा शृणोत्यथा मुने सुतोक्तो निरितिस्त तक्षकाख्य ससाधु मेने न चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारकम् कारणं सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोत्यथा मुने सुतोक्तो निरितस्तक्षकाख्य ससाधु मेने न चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणं सचिन्तयन्नित्यमथा शृणोत्यथा मुने सुतोक्तो निरितिस्तक्षकाख्य ससाधु मेने न चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। शब्दात् सचिंतयन, सचिंतयन मतलब राजा, स मतलब उसने यानी राजा ने चिंतन, वो सोच ही रहा था, ऐसा उनके मन में ऐसे विचार आ रहे थे, इत्थम इस प्रकार कि काश ऐसा हो कि मेरा धन राज्य सब कुछ मुझसे छिन जाए, मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आए, मेरे ऊपर बहुत जरा संकट आए, अभी का अभी मेरा सब कुछ लुट जाए, ताकि मैं आइंदा कभी भी ऐसा भविष्य में कार्य ना कर सकूं। तो ऐसा वो चिंतन इत्थम यानी वो ऐसा चिंतन कर रहे थे, मथा श्रोत्यथा अब अथा यानी अब श्रोत्यथा अब उनको ऐसा सुनाई दिया यानी अब उनको ऐसी सूचना मिली। क्या सूचना मिली? मुने सुतोक्तो मुनि के पुत्र द्वारा, कि अभी मुनि के पुत्र ने जो उनको श्राप दिया था, क्या श्राप दिया था? निरित्ति, निरित्ति का इसका मतलब निरिति यानी मृत्यु के विषय में उनको पता चला, उसने सुना कि ऋषि के पुत्र ने मृत्यु का श्राप दिया है, और किस प्रकार की मृत्यु होगी? तक्षकाख्य, तक्षक सर्प के विषय में कि तक्षक सर्प द्वारा राजा की मृत्यु होने वाली है। तक्षक एक बहुत ही भयानक सर्प है जो पाताल लोक में रहता है। पाताल लोक में बहुत प्रकार के सर्प रहते हैं, श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन आता है। और अभी राजा इसी विषय में सोच रहा था कि अचानक उन्होंने, क्योंकि जो श्रमिक मुनि है उन्होंने सूचना भिजवा दी थी, जैसे ही उन्होंने सुना अपने पुत्र श्रृंगी के मुख से कि मैंने राजा को श्राप दे दिया है, उसी समय श्रमिक मुनि ने अपने शिष्य द्वारा राजा को यह सूचना दिलवा दी थी कि राजा आप अपनी मृत्यु की तैयारी कीजिए, मैं बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा दुखी थे श्रमिक मुनि, साथ साथ बहुत ज्यादा लज्जित भी थे, वो राजा के सामने नहीं जा सकते थे, इसलिए किसी के द्वारा यह सूचना राजा तक पहुंचा दी थी कि मुनि के पुत्र ने उन्हें यह श्राप दिया है कि तक्षक सर्प के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जब महाराजा परीक्षित ने यह सब सुना तो उन्होंने कैसा सोचा, उनको कैसा लगा? साधु मैंने उनको बहुत अच्छा लगा, उनको ऐसा लगा कि ये तो मेरा सौभाग्य है, उनको अपार प्रसन्नता, साधु मैंने, बहुत अच्छा हुआ, शुभ हुआ, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, उनको बहुत सुनकर प्रसन्नता, अपार सुख, क्योंकि उनके मन में जो क्लेशाग्नि झलस रही थी कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, उस पर जैसे किसी ने ठंडे पानी का छींटा मार दिया हो। साधु मैंने नचिरेण तक्षक, नचिरेण यानी कि अब अधिक देर नहीं लगनी चाहिए, अभी सर्प को मुझे मार डालना चाहिए, तक्षक सर्प को जल्दी से जल्दी मेरी मृत्यु का कारण बनना चाहिए, आज ही मुझे। वास्तव में भक्तों, ये भगवान के भक्त की इच्छा होती है कि मैं जल्द से जल्द भगवान के पास पहुंचूं, एक समय एक क्षण भी उसके लिए बहुत कठिनाई से गुजरता है, एक एक क्षण वर्ष की तरह लगता है जब वो अपने भगवान से विरह का अनुभव करता है। महाराजा परीक्षित का वही उस समय हाल था, वही उनकी अवस्था थी, उनको ऐसा लग रहा था कि वाकई में ये संसार मैं नहीं जीना चाहता हूँ, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, इस संसार के अंदर तो बहुत ज्यादा आसक्ति है, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक भक्त वहाँ पर आनंदित रह सके, भक्त की यही इच्छा होती है कि मैं भगवान को प्राप्त करूँ, भगवान के साथ अपने वास्तविक स्वरूप में आकर भगवान की सेवा करूँ। तो महाराजा परीक्षित को ऐसा लगा था, साधु मैंने नचिरेण तक्षका, और क्योंकि ये मेरे राज्य में आसक्त हूँ, नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, ये तक्षक की अग्नि, तक्षका नलम यानी तक्षक के विष की जो अग्नि है वो प्रसक्तस्य मेरे जैसे आसक्त व्यक्ति के लिए विरक्ति कारणम यानी उसकी विरक्ति का कारण बनेगी। ये तो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, मैं तो राज्य के अंदर इतना ज्यादा आसक्त हो गया हूँ, भगवान की भक्ति के लिए भी समय नहीं निकलता, तो ये तक्षक जो है वो मुझे इन समस्त राज्य से विरक्त कर देगा, राज्य की आसक्ति से विरक्त कर देगा, मुझे कृष्ण प्राप्ति होगी। वास्तव में भक्तों, जो भक्त नहीं होते ना वो इसी संसार में रहकर आनंदित होना चाहते, वो बोलते भले कुछ भी हो जाए हमारे साथ, भले दुख मिल रहा है जो भी मिल रहा है, लेकिन अधिक से अधिक हम इस संसार में रहना चाहते हैं। परंतु एक भक्त जो होता है वो चाहता है कि मैं भगवान के धाम को प्राप्त कर लूं, उनको ऐसा लगता है संसार तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये संसार तो ऐसा लगता है टॉयलेट है, टॉयलेट लेटरिन की जगह है, वहां पर रहने के लिए नहीं होता है, वहां पर जाओ अपना काम करो जल्दी से फिर वापस से वहां से निकलो, ऐसे सोचना चाहिए। इतनी गंदी जगह है ये संसार कि आ गए किसी कारणवश हमारे से कोई अपराध हो गया तो उसका हिसाब किताब यहाँ पर करो और निकलो भगवान के धाम के लिए। सदैव मन में यह इच्छा होनी चाहिए कि मैं कब भगवान का सानिध्य प्राप्त करूंगा, कब मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि मैं तो भौतिक वस्तुओं में बहुत ज्यादा आसक्त हो गया हूँ, लेकिन अब तक्षक सर्प की जो विष की अग्नि है वो मेरी विरक्ति का कारण बनेगा, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, इससे तो मेरा बहुत कल्याण है, यही मेरे लिए शुभ है, ऐसा ही होना चाहिए था। अनुवाद, जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार तक्षक सर्प के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्कर के बंद होने पर ही प्राप्त हो सकता है, जन्म मृत्यु के चक्कर को भगवत धाम जाकर ही तोड़ा जा सकता है। वास्तव में हमें संसार में कभी भी आनंदित नहीं हो सकते जब तक हमारे जन्म मृत्यु की श्रृंखला खत्म नहीं होती है, तब तक हम वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। और ये श्रृंखला कब खत्म होगी, जब हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त करके भी जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूटा जा सकता, तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। यह सिद्धि पथ मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त कराने वाला है और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतएव जो दीनहीन हैं वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे प्रत्याशी हैं, यानी कि जिनको भौतिक वस्तुएं जिनके पास ज्यादा नहीं है उनकी आसक्ति भी कम है, तो वो बहुत आसानी से कृष्ण के प्रति अपना अनुराग निर्माण कर सकते हैं। तो और भी अच्छा है ना, इस संसार में जितना ज्यादा हमारे पास वस्तुओं और व्यक्तियों का प्रेम होगा उतना ही ज्यादा हमें भगवान से दूर करेंगे। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के लिए प्रामाणिक प्रत्याशी थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे यह जान सके थे कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह संसारिकता से चाहे राजनीतिक हो या समाज विरक्ति का कारण बना। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर महाराज परीक्षित के भाव के विषय में बता रहे हैं कि वो जानते थे कि जो ब्राह्मण बालक ने मुझे श्राप दिया है वो मूर्खतावश दिया है, लेकिन फिर भी मेरे लिए वरदान की तरह है। क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, और सम्राट होने के कारण बहुत सारी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। उन सब के कारण वो बहुत बिजी थे, जिसके कारण वो आध्यात्मिकता के लिए अधिक समय नहीं निकाल पाते थे। विरक्ति नहीं थी, तो वो ऐसा सोच रहे थे कि मेरे ऊपर भगवान ने कृपा की कि अब मुझे इन सब, उसी क्षण जैसे उन्होंने सुना कि मुझे श्राप मिला है 7 दिन की मृत्यु का, उसी क्षण अपना पूरा राज्य, अपने पुत्र जन्मेजय आदि जितने 4 पुत्र थे उनके, उनको दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बोला अब जो तुम करना है करो, जैसे करना है, मैं भगवत प्राप्ति के लिए जाना चाहता हूँ। तो जैसे ही मृत्यु का समाचार मिला, सारी वस्तुओं से, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने विरक्ति, डिटेचमेंट कर दी। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, शमीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना दी थी ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहें। शमीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा था, यद्यपि उनका पुत्र श्रृंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग राजा को व्यर्थ में श्रापित करने में किया था। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु शाप के लिए पर्याप्त कारण न था, लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई साधन नहीं था, अतिव राजा को सूचित कर दिया गया था कि 1 सप्ताह के भीतर मरने के लिए तैयार रहें। शमीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध प्राणी थे। शमीक मुनि योगी थे और महाराजा परीक्षित भक्त थे, अतएव उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत नहीं था। महाराजा परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आसन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। यानी कि वो अभी महाराज परीक्षित सोच रहे थे, पहले इतना ज्यादा दुखी थे, तो उन्होंने सोचा मैं जाके उनसे क्षमा याचना करूं, लेकिन जैसे उनकी सूचना उनको मिली तो इतना खेद था। महाराजा परीक्षित ने सोचा अब मैं वापस उनके सामने आऊंगा तो कितना लज्जित होंगे। उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। वे कहते हैं, यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापिस जाने या जन्म मृत्यु के चक्कर से, भाव सागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सुअवसर है। समस्त मनुष्यों को ये चाहिए कि अपने इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं और कुछ ऐसा करें कि दोबारा वापिस जन्म न लेना पड़े। यह जन्म लास्ट हो, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा सिंसियर होना है। भौतिक वस्तु और व्यक्तियों से जो हमारी आसक्ति है उसको समाप्त करके भगवान के चरणों में स्थापित करना है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार वर्णाश्रम प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम जाने के लिए तैयार करती है। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म में क्या होगा, ब्रह्मचारी को वेद अध्ययन करना होता है, शास्त्र अध्ययन करना होता है। उसके बाद ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर सकते हैं, और ये गृहस्थ आश्रम भी एक पर्टिकुलर समय के लिए, और उसके बाद फौरन। ऐसा नहीं है कि जानवरों की तरह पूरी जिंदगी काम वासना को पूरा करते करते समाप्त हो जाए। वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करना होता है ताकि उस वानप्रस्थ आश्रम के बाद उसमें जंगल में जाते हैं और सन्यास की तैयारी होते हैं और मृत्यु से पूर्व सन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराजा परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व ही सूचना प्राप्त हो गई थी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी निश्चित पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। यद्यपि मृत्यु सबों के लिए अवश्यंभावी है, तो हमारे लिए तो कोई पता ही नहीं है कि कब मृत्यु आएगी। इसीलिए आज से ही हमें तैयारी करना शुरू करनी। हो सकता है कल ही मृत्यु हो जाए, कल उठेंगे या नहीं उठेंगे कोई गारंटी नहीं है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मूर्ख लोग मृत्यु के इस ध्रुव तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पार्श्विक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। बस मुझे अधिक से अधिक खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है, ये करना वो करना, इसी में पूरा जीवन व्यर्थ जाया कर देते हैं जो मूर्ख होते हैं। ऐसा अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के तिरस्कार की पापपूर्ण इच्छा घर की रहती है और इसके लिए राज्य उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दें। यानी कि जो सही राजा होगा उसको तो अवश्य ऐसा कार्य करना चाहिए, गौ की रक्षा करनी चाहिए और लोगों को ईश्वर चेतना का अवसर प्रदान करना चाहिए, ब्राह्मण संस्कृति को उत्पन्न कर। इसी से ही जीव या मनुष्य जो है वो मृत्यु की रियल तैयारी कर सकेगा, यानी कि ऐसी तैयारी कि वो मृत्यु के बाद वापिस कभी जन्म ना ले। तो जो राजा ऐसा करता है वह असली कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासकादक्ष महाराज परीक्षित के आदर्शों का पालन करें। वह अन्य भौतिकतावादी राज्य को अनुकरण ना करें जिनके पास भगवत धाम की कोई कल्पना नहीं है। दूसरे जितने भी राज्य, हमारी सनातन धर्म की संस्कृति के अतिरिक्त जितने भी राज्य हैं, उनके मन में बस इतना ही है इस भौतिक जगत में कैसे अधिक से अधिक आनंद करना है। भौतिक जगत में खाओ पियो मरो इंद्र तृप्ति के अतिरिक्त, और उनके पास तो स्वर्ग तक की भी इतना भी नहीं होता है कि यहाँ पर तपस्या करके स्वर्ग में। अगर थोड़ा बहुत किसी के पास बुद्धि है तो वो सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में अच्छे कार्य करके स्वर्ग में जाएं, इससे अधिक उनके पास कुछ भी नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वह अन्य भौतिकतावादी राज्य के अनुकरण ना करें जिनके पास भगवत धाम की कोई कल्पना ही नहीं है, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में उतार आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आ गई है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक हम अपनी संस्कृति को, अपने शास्त्रों के अनुसार अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक यूं समझो कि हम अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही बेकार गंवा रहे हैं। इसे हमें कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर परीक्षित महाराज को जैसे ही पता चला कि उनकी मृत्यु निकट आ गई है तो वो आनंदित हो गए हैं, और अभी वो क्या करते हैं, उनको भौतिक जगत का कुछ भी, कोई भी सुख लगता ही नहीं था। मुख्य बात ये है कि मनुष्य अपने जीवन में किसको महत्व दे रहा है। अगर आप भौतिक जगत के सुखों को आप महत्व दे रहे हो तो समझो आपको तो ये पता ही नहीं है कि ये भौतिक जगत को सपने की तरह है। जैसे सपने में अगर आपको राजा भी बना दिया जाए तो कोई फायदा नहीं है। महत्व तो आध्यात्मिक जीवन को मिलना चाहिए। ये भौतिक पूरा ब्रह्मांड, चाहे ये भूलोक हो, भवलोक हो, पृथ्वी लोक हो, या फिर स्वर्ग लोक हो, ब्रह्म लोक हो, कहीं पर भी चले जाए, मनुष्य आनंदित नहीं हो सकता जब तक कि वो भगवत धाम को प्राप्त ना कर सके। इसलिए सुध गोस्वामी आगे कहते हैं, श्लोक नंबर 5, अथो विहाये मम मुञ्चलोकम् विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्ग्रिसेवा अधिमन्यमाना उपाविशत् प्राय ममर्त्यनध्याम् अथो विहाये मम मुञ्चलोकम् विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्ग्रिसेवाम् अधिमन्यमाना उपाविशत्प्राय ममर्त्यनध्याम् अथो विहाये मम मुञ्चलोकम् विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्ग्रिसेवाम् अधिमन्यमाना उपाविशत्प्राय ममर्त्यनध्याम् अथो विहाये मम मुञ्चलोकम्। यानि ये जो अथो का मतलब होता है इस तरह विहाय छोड़ दिया। एवं यानि यह अममुंच तथा अगला च लोकम्, फिर उन्होंने इस भौतिक जगत के सुख को और स्वर्ग के स्वर्ग मम अममुच्च यानी अगला जो स्वर्ग लोक होता है या ब्रह्म लोक होता है उन सबको तुच्छ समझ के वैसे ही विमर्श तो हेय तया पुरस्तात्। वो सोचते थे हेय है, हेय का क्या मतलब है कि ये निम्नता है, ये बिल्कुल त्याग है। विमर्श तो उन्होंने बहुत ज्यादा निर्णय, बहुत ज्यादा सोचने के बाद यह निर्णय लिया कि इस भौतिक जगत का सुख और स्वर्ग लोक का सुख और ब्रह्म लोक का सुख वो तो हेय है, तेजज्ञ है, निम्न है। इनका इसलिए इनके प्रति तो महाराजा परीक्षित को पुरस्कार, यानी बहुत पहले ही उनको ऐसा लगता था कि ये सब सुख तो त्याग देने के योग्य हैं। महाराजा परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, जन्म के समय उन्हें भगवत दर्शन हुए थे और तभी से विरक्त थे। ये तो उनके ऊपर यह राज्य का भार आ गया था जिसके कारण वो राज्य संभाल रहे थे, वरना किसी भी भौतिक वस्तु और भौतिक व्यक्ति में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। यदि आसक्ति होती तो उनको जैसे पता चला कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है या 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली, तो उनको दुख होता या खुशी होती। वास्तव में हमें जो मृत्यु का दुख होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक वस्तुओं के साथ हमारी जो आसक्ति होती है ना, उसके कारण होता है। लेकिन इनको तो जैसे पता चला तो ससाधु में इन्हें नचिरे न तक्ष, उनको तो लगा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। तो अथो विहाये मम मुंच लोकम, इस लोक का सुख और स्वर्ग लोक का सुख उन्हें नहीं चाहिए था। विमर्शितो हेयतया पुरस्तात्, पहले से ही उनको ऐसा लगता था ये सब तो त्याजन्य है। तो फिर जीवन में वास्तव में किसको महत्व मिलना चाहिए? बहुत ही सुंदर, भगवान को, भगवान के श्री चरणों को। यहाँ सूत गोस्वामी कहते हैं कृष्णाङ्ग्रि सेवम अधिमन्यमानम, अधिमन्यमानम यानी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि। संसार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु यदि कोई है तो कृष्णाङ्ग्रि सेवा, अंग्री माने भगवान के चरण कमलों की सेवा। यदि भगवत चरणों की सेवा किसी को प्राप्त हो जाए तो उसको संसार के और किसी भी सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इसीलिए ये परीक्षित महाराज उसी अर्जुन के पौत्र हैं जिन्होंने युद्ध के समय में भगवान की नारायणी सेना का परित्याग करके कृष्ण को सुना। कथा सब जानते हैं, दुर्योधन और अर्जुन भगवान के पास गए थे सहायता मांगने के लिए। भगवान ने अर्जुन को पहले अवसर प्रदान किया ताकि अगर पहले दुर्योधन को अवसर प्रदान किया और दुर्योधन कुछ भी उठा ले, अगर अर्जुन के पास दोनों चॉइस नहीं होते हैं, एक ही चॉइस होता तो फिर बोलते अब क्या करें, उसके पास एक ही चॉइस थी इसलिए कृष्ण उठा लिया। नहीं, अर्जुन के पास सेना भी और कृष्ण दोनों की चॉइस थी, वो कुछ भी उठा सकते थे, लेकिन सेना का सानिध्य नहीं चाहा और कहा मुझे कृष्ण आप चाहिए। कृष्ण ने कहा मैं तो युद्ध भी नहीं करूंगा, मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो फिर तुम युद्ध के लिए सहायता लेने के लिए आए हो? अर्जुन, युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता होती है। दुर्योधन ने जब सेना को चुना तो फिर दुर्योधन चला गया, बोला सेनापति को आदेश दीजिए मेरे साथ चलिए, मैं सेना ले लेता हूं। तब कृष्ण ने दुर्योधन के जाने के बाद अर्जुन से कहा तुमसे बड़ी भूल हो गई अर्जुन, तुम्हें सेना को चुनना चाहिए था। तब कृष्ण को अर्जुन ने कहा केशव मैं सेना के लिए नहीं आपके लिए आया था, मुझे आपका साथ चाहिए, यदि आप मेरे साथ हो तो मनुष्य तो क्या देवताओं को भी हरा सकता हूँ युद्ध में, मैं आपको अपना सारथी बनाना चाहता हूँ। महाभारत में लिखा है ऐसा, हे कृष्ण केवल रथ की ही नहीं मैं अपने जीवन की भाग दौड़ भी आपको सौंपना चाहता हूँ, मेरे जीवन की डोरी को भी आप ही पकड़ लीजिए, जिधर खींचना है जिधर ले जाना है आप ले जाइए, कृष्ण मुझे आपके अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता नहीं है। इसी अर्जुन के वंशज थे परीक्षित महाराज, इसलिए उनके पास भी यदि सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कृष्णांग्रि सेवाम अधि मन्यमानम उपाविशत प्रायम अमर्त्यनध्याम उपाविशत, फिर जो दृढ़ता से बेग प्राय उपवास के लिए, अब उन्होंने सारा कार्य छोड़ दिया, अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और आकर बैठ गए कहाँ पर, अमर्त्यनध्याम। अमर्त्य मन दिव्य नदी, गंगा या यमुना ये दोनों को अमर्त्य नदी कहा जाता है उनके तट पर। तो महाराज परीक्षित क्योंकि हस्तिनापुर में थे और हस्तिनापुर में गंगा जी के तट पर, हालांकि हस्तिनापुर में भी गंगा जी जो है वो बहती थी, लेकिन फिर भी वो जंगल की तरफ जहां पर आनंदवन जहां सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद भागवतम का उपदेश दिया था वहां पर जाकर वो बैठ गए। अनुवाद देखिए, महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी अनुवाद में कहते हैं आत्म साक्षात्कार की तो और भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाना सबसे सरल विधि है और सबसे उत्तम विधि है, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति से ये जो अन्य जितनी भी विधियां हैं वो सब मात खा जाती हैं, क्योंकि कृष्ण प्राप्ति ही वास्तविक लक्ष्य है और वो तभी प्राप्त हो सकती है जब हम कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हैं। मन मना भव मत भक्त, भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मामे वैश्यसि सत्यम ते, इसी तरह से तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो महाराज परीक्षित ने बाकी समस्त विधियों को छोड़कर यज्ञ दान तपस्या इन सब का परित्याग करके भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए गंगा के तट पर आकर आसित हो गए। अनुवाद सॉरी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्म लोक भी उतना वांछनीय नहीं है जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गौलोक धाम वृंदावन है। यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य लोकों में से एक है और महत्त्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी ब्रह्मांडों के विषय में बता रहे कि महत्त्व की जो परिधि है, कारण दक्षाय विष्णु सांस लेते हैं और असंख्य ऐसे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए इन ब्रह्मांडों या उनके उच्च लोकों की कोई भी महत्ता नहीं होती है, उनकी कोई वांछनीय नहीं होते कि मैं इस लोक में जाऊं इस ब्रह्मांड में जाऊं। यहाँ पर तो लोग जो हैं वो पृथ्वी पे ही कभी बोलते हैं इस कंट्री में हमें जाना चाहिए, इस कंट्री में ज्यादा सुख है, उस जगह पे जाना चाहिए, एरिया छोड़कर या फिर कंट्री चेंज करके कभी भी आनंदित नहीं हो सकता। ये सोचना चाहिए कि कहां पर मैं अधिक से अधिक कृष्ण का भजन अच्छे तरीके से कर सकूं, एक ऐसी जगह। तो सर्कमटेंसेस के अनुसार जो जगह जहां पर आप अच्छे से भक्ति कर सकते हो, वृंदावन धाम, मायापुर धाम, ऐसे जगहों को चॉइस करना चाहिए जहां पर हम आनंद से भक्तों का संग कर सकें और भगवत भक्ति में उन्नति कर सके। श्रीला प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य लोकों में से एक है और महातत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। भक्तों को भगवान द्वारा तथा भगवान के प्रतिनिधि गुरुओं या आचार्यों द्वारा बतलाया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांडों में से कोई भी लोक भक्तों के रहने के योग्य नहीं है। भक्त सदैव भगवत धाम जाने के इच्छुक रहते हैं जहाँ के वे जहाँ वे सेवक, मित्र, माता पिता या भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर किसी एक वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सकें। भक्तों की यही इच्छा होती है कि हमें भगवान के साथ उनका कोई घनिष्ठ मित्र, उनका सेवक या जैसे दास्य रस, माधुर्य रस या वात्सल्य रस या सखा भाव, इसका आस्वादन कर सकूं। भक्त की यही इच्छा होती है कि मुझे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारे लोक परव्योम में स्थित हैं, जो महातत्व के अंदर कारणव्य की दूसरी ओर है। महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्मनिष्ठ के कारण पहले ही इन सारी सूचनाओं से अवगत थे। आधुनिक विज्ञानी भौतिक व्यवस्था द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने के अत्यंत उत्सुक हैं, लेकिन वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार की किसी भी भौतिक लोक की रंच भी परवाह नहीं करता है। अतएव जब उन्हें एक निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया गया तो वे दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हस्तिनापुर की राजधानी जो अब दिल्ली प्रांत में है, उसके पास से होकर बहती है, पूर्ण उपवास द्वारा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। गंगा तथा यमुना दोनों ही अमर्त्या दिव्य नदियां हैं और यमुना अब भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र है। वास्तव में ये गंगा नदी है जो हस्तिनापुर से बहकर निकलती है, शायद त्रिंटिक मिस्टेक होगा, आगे भी इसी बात को क्लियर करेंगे सुत गोस्वामी श्लोक नंबर 6 में। या वै लसत् श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्री रेण्वभ्यधिकाम्भुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्ताम् न सेवितमरिष्यमाण। या वै लसत् श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्री से कृष्णांग्री रेणु क्षमा या वैलसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्री रेणु व्यधिकाम्भुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्ताम् न सेवितमरिष्यमाणः। या वै लसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्री रेण्व भ्यधिकाम्भुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्ताम् न सेवितमरिष्यमाणः। यावै लसत, यावै जो नदी सदा लसत यानी प्रवाहित होती है, श्री तुलसी यानी तुलसी विमिश्र, विमिश्र यानी मिश्रित, वो नदी जिसके अंदर तुलसी के पत्तों की गंध होती है, क्योंकि इसके अंदर तुलसी पत्र की गंध, तुलसी की गंध कहाँ से आती है? क्योंकि कृष्णांग्री रहे, क्योंकि ये वास्तव में कृष्ण के चरण कमलों को पखार के फिर उत्पन्न हुई है। जैसे हम जानते हैं कि जब भगवान वामन के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने, वामन भगवान ने अपना एक चरण जो है वो पूरे ब्रह्मांड से ऊपर तक, थारे लोक जब इसके अंदर आ गए तो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर एक परिधि है। जब हमारा भौतिक लोक समाप्त होता है तो एक पर्दा है, उस पर्दे को जब भगवान का चरण स्पर्श हुआ तो वहां पर कारण दर्शाए विष्णु, जो जहां पर कारण समुद्र में व्रजा नदी में है, तो वहां पर भगवान का चरण स्पर्श हुआ तो वहां से पर्दे में थोड़ा सा छेद आ गया और वो कारण व समुद्र वो स्पिरिचुअल वॉटर है, इस भौतिक जगत का नहीं है। तो वो स्पिरिचुअल वॉटर भगवान के चरणों को स्पर्श करके, मतलब भगवान के चरणों को धोकर जब ब्रह्मलोक तक गिरने लगा तो ब्रह्मा जी ने उस जल को कमंडलों में धारण किया और कमंडलों में धारण करके उन्होंने यह जल संचित करके रखा। सदैव उस जल का सेवन करते हैं, सदैव ब्रह्मा जी उस जल को जल के साथ स्वयं को पवित्र करते हैं उसी जल, क्योंकि ये भगवान के चरण कमलों को स्पर्श किया हुआ, उनके चरणों को धोकर ये जल प्राप्त हुआ था। इसलिए बता रहे हैं कृष्णांग रेणु, कृष्णांग यानी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के, रेणु दूर से अभ्यदिक यानी शुभ अम्बु जल, ये जल जो भगवान के चरणों से, चरणों की धूल को लेकर उनके चरणों पर लगी हुई तुलसी गंध को लेकर आता है। पुनाति लोकानु, सारे लोकों को जितने भी लोक हैं, उभयत्र यानी ऊपर और नीचे अथवा भीतर के सारे लोकों को पवित्र करना है। पुनाति उन सब लोकों को पवित्र करता है। स ईशान, सेशान का मतलब होता है शिवजी, ईश कहते हैं शिवजी को, तो शिवजी को भी, शिवजी के साथ सारे लोगों को, ब्रह्मा जी को और समस्त लोगों को पवित्र करने वाला ये जल है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के चरणों से निकला है। भागवतम में एक बार प्रश्न आता है भगवान कौन है, सीधा सरल उसका उत्तर दिया जाता है कि जिनके चरणों से गंगा जी निकली है और वही गंगा जी जिनकी सेवा ब्रह्मा और शिव करते हैं। ब्रह्मा जी सदैव अपने कमंडलों में धारण करते हैं और शिव जी ने सबसे ज्यादा, यदि गंगा जी का किसी ने आदर किया है तो वो शिव जी हैं। शिव जी ने अपनी जटाओं में, अपने मस्तक पर उस जल को स्थान दिया है। तो शिव जी और ब्रह्मा जी उस जल को, क्योंकि भगवान के चरण कमलों को थोक कर ये जल आया है, उसकी सेवा करने में अपना सौभाग्य मानते हैं, इसीलिए वही भगवान हो सकते हैं जिनके चरणों से जल निकला है। इसलिए यहाँ सूत गोस्वामी पुनाति लोकान उभयत्र सेशान, यानी भगवान शिव के साथ सारे विश्व को पवित्र करती है। कस्ताम न सेवे तमरीशमान, कस्तान सेवे, ऐसा कौन बेवकूफ होगा, कस्तान यहाँ बता रहे हैं अन्य, ऐसा कौन होगा जो उस नदी को न सेवेत, पूजा नहीं करेगा, जो नदी शिव और ब्रह्मा जी के लिए भी पूज्य है, उन ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो उसको नहीं सेवा करना चाहेगा, उनका सेवन नहीं करना चाहेगा। और मरीष्यमाण, स्पेशली जब वो मृत्यु के आसन पर खड़ा होगा, मरीष्यमाण जो मृत्यु का समय जिसका निकट आ जाए, उसको यदि अपना कल्याण करना है तो गंगा जल का सेवन करना चाहिए उसको। तो इसलिए महाराज परीक्षित अब गंगा नदी का आश्रय लेकर वहां पर आकर आसीन हुए हैं। जो गंगा नदी भगवान के चरण कमलों से निकली है और वो जानते हैं कि मेरा कल्याण यदि होगा तो यहीं पर होगा। एक बार ऐसा हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया तो उन्होंने सारी लीलाएं यमुना के तट पर की, है ना, यमुना के तट पर ही सदैव वो विहार करते थे। तो गंगा जी को बहुत दुख होता था, वे रोती थी, वे सोचती थी कि भगवान मेरे साथ तो आपका कोई लीला नहीं होती है, आप मेरे सामने राधा जी के साथ कभी आके विहार नहीं करते हो, तब कृष्ण उनको आश्वासन देते हैं गंगा जी को कि नहीं गंगे, आप दुखी मत हो, मेरी लीलाएं भले ही यमुना तट पर होती हैं, परंतु इन लीलाओं का गान जब होगा तो तुम्हारे तट पे होगा। तो यही गंगा का तट है जहां पर सौनिक आदि ऋषियों ने प्रथम बार भक्ति महारानी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवतम सुनाया था, जिसमें भगवान की समस्त लीलाओं का बहुत ही आनंददायक वर्णन। और यही गंगा का तट है जहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान की लीलाओं का आस्वादन कराएंगे। तो इससे गंगा नदी का हृदय का संताप, क्योंकि भगवान और भगवान की लीलाओं में कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पर गंगा नदी का सौभाग्य है कि महाराज परीक्षित आज यहाँ पर उस समय की भूमिका बना रहे हैं जहाँ पर आकर परीक्षित महाराज हमें इन भगवान की अत्यंत ही पवित्र लीलाओं का रसपान कराने वाले हैं। अनुवाद देखिए। यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठा था, अत्यंत ही शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव जी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही गृहस्थ जीवन छोड़ दिया और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन श्री अजीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना तट पर शरण ली थी। श्री अजीव गोस्वामी का कथन भौगोलिक तिथि के कारण सही प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और इस नगर के पास से होकर यमुना नदी बहती है। अस्तर में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी यमुना नदी बता रहे हैं, लेकिन राधा गोविंद महाराज से जब मैं कथा सुन रही थी तो उन्होंने गंगा नदी बताई। बहरहाल यमुना नदी और गंगा नदी दोनों ही पवित्र नदियां हैं। तो यहाँ पर दिल्ली के निकट जो बता रहे हैं कि दिल्ली के निकट स्थित और इस नगर के पास से होकर यमुना नदी बहती है, स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण के अधिक निकट संबंध में है। भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया था। जब उनके पिता वसुदेव बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल लेकर जा रहे थे, तो भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और भगवान के चरण कमल की धूल का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की थी जो सुंदर ढंग से बह रही थी, और तुलसी दल के मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूल लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर सदैव तुलसी दल चढ़े रहते, अतएव ज्यों ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती हैं। लेकिन भगवान ने गंगा की उपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। वराह पुराण में के अनुसार, जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है कि गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के 1 नाम के बराबर हैं और राम के 3 नाम कृष्ण के 1 नाम के तुल्य हैं। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से बता रहे हैं कि यमुना की महानता जो है वो गंगा नदी से अत्यधिक बढ़कर है, क्योंकि क्योंकि भगवान ने अपनी सारी लीलाएं यमुना नदी के तट पर ही की हैं। तो महाराज परीक्षित ने यमुना के तट पर बैठकर भागवत महापुराण श्रवण किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, आगे का प्रसंग हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।